नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है राजनीति का आयाराम और गया और राजनीतिक दल। चुनाव लड़ने के लिए नेता जिस तरीके से दल बदल का खेल करते हैं, इसमें जनता, लोकतंत्र, विचारधारा, राजनीतिक वफादारी जैसे शब्द अपनी महत्ता को देखते हैं। नेताओं द्वारा ऐसा करने वाले केवल शब्द का ही नहीं, लोकतंत्र की भावना भी अपने वास्तविक अर्थ को खत्म होता जा रहा है, जो जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन को संचालित होती है। आज हमारे साथ समाजवादी विचारक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघुजी ठाकुर सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पे स्वागत है आपका।
जी नमस्कार गौतम जी, नमस्कार।
जी सर। सर, राजनीति का आयाराम का दौर और विचारों की राजनीति पर कितना सही देखते हैं वर्तमान परिवेश सर?
ये आयाराम का जो दौर है, आयाराम गयाराम का दौर, ये अभी बहुत बढ़ गया है। और हालांकि ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत आज हुई हो, शुरुआत तो उसकी पहले हो गई थी। कांग्रेस पार्टी जब 50 के दशक में ये शुरू कर दिया था, और पहले जो हम लोग की सरकार बनी थी समाजवादियों की केरल में, जिसके मुख्यमंत्री थे पट्टम थानू फिल्लई, तो उनकी सरकार को तोड़ के सरकार बनाई थी। तो ये तो तब से आराम ग्रामीण का शुरू हो गया था, परंतु बाद में इसके कई प्रकार के स्वरूप सामने आए। जैसे 1980 के पहले बहेलाल जो थे, यह जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ में लेके शामिल हो गए जनता पार्टी में, और फिर 80 में जाके वो शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में, पूरा मंत्री वहां चला गया। और अब जो है, अब स्थिति ये है कि जैसे ही चुनाव का समय आता है, तो जिसको टिकट पार्टी दे देती है वो ठीक है, नहीं मिलता है तो आज वो कितना ही पुराना क्यों छोड़ के चला जाता है। अभी कई घटनाएं हम लोग सामने आई, जैसे अभी दीपक जोशी जी कांग्रेस में गए हैं भाजपा को छोड़ करके। अब दीपक जोशी के पिताजी जो थे स्वर्गीय कैलाश जोशी, जो हम लोग साथ में इमरजेंसी में भी थे और मुख्यमंत्री रहे, वो आरएसएस के जदयू स्वयं सेवक रहे और बड़े पदों पर भी रहे, परंतु
जी
अब आदमी के पास में ये धैर्य नहीं है कि वो एक मिनट का भी कहीं इंतजार करे। वो अब तो जो स्वरूप आ रहा है, और इतना बदतर स्वरूप है कि आयाराम गयाराम क्या है, मतलब पार्टियों का ही अदला बदली हो रही है। अभी जैसे मुरैना की घटना के सामने आपके आई होगी कि एक क्षेत्र है विधानसभा का सुमावली, सुमावली क्षेत्र से अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के विधायक थे, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया, कांग्रेस से टिकट दिया कुलदीप सिंह सिकरवार को। तो अजब सिंह कुशवाहा जाके बन गए प्रत्याशी बसपा से। बाद में कांग्रेस ने कुलदीप सिकरवार का फॉर्म कैंसिल कर दिया, फिर से अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया, तो कुलदीप सिकरवार जाके बन गए बसपा के प्रत्याशी। तो अब तो ये हालत हो गई है कि सीधा खुला बाजार है, राजनीति एक प्रकार की खरीद फरोख्त की मंडी बन गई है। और इसकी वजह यह है कि जब कोई सिद्धांत या लक्ष्य सामने नहीं होता है, केवल व्यक्तिगत हवस, व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत तो सत्ता चाहिए लोगों के लिए, तो फिर इस प्रकार का दल बदल होता है।
जी
तो ये
सर।
बहुत पतन का दौर है। और इससे एक और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो ये है कि इस पतन के ऊपर रोक कौन लगाए। तो जो लोग निर्वाचित लोग होते हैं, उनके ऊपर जो थोड़ी सी रोक लगी कानून के द्वारा, कि अगर लोग छोड़ के जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको यहाँ पे बाई इलेक्शन होगा। परंतु अगर जनता इस ऊपर मोहर लगाने लगे तो फिर इसका क्या होगा? पिछले दिनों हम लोग देखा कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा के साथ आए, विधायक लोग आए थे, उससे अधिकांश विधायक लोग जीते, और ना केवल जीते बल्कि दुगने वोट से जीते। तो अगर जनता ही, जनमत ही दल बदल के ऊपर मोहर लगाने लगा है, तो इसका मतलब है कि इसका पर अब कोई अंत नहीं है, एक बहुत भयावह दौर है। तो इस दौर से हम सभी को चिंता है। हम लोगों की पार्टियां इसलिए टिकी रहती है क्योंकि हमारी पार्टियां सिद्धांत की पार्टियां हैं, विचार की पार्टियां हैं। तो यहाँ जो लोग हैं वो कोई एक प्रकार से समर्पित होते हैं और कुर्बानी करने के होते हैं, तो इसलिए यहाँ कोई खतरा नहीं होता है।
सर, सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपने विचारों को कितना सही तरीके से देखते हैं सर राजनीति में?
अब तो देखिए ये हो गया है, योगेंद्र जी के कौन सा सत्ता पक्ष है, कौन सा विपक्ष है, समझ में नहीं आता है। किस दिन सत्ता पक्ष विपक्ष वाला बन जाता है, विपक्ष वाला सत्ता पक्ष बन जाता है। अभी एक सज्जन थे जो भिंड के विधायक थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप थे। कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई पिछले, मतलब ये आपको बता रही पंचवर्षीय वाली 18 के बाद की, और उस प्रस्ताव के ऊपर वो बोलने वो खड़े हुए, और उन्होंने वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव का, जिसकी उनकी पूरी पार्टी लाई थी, उन्हें आदेश जारी किया था सबको हाजिर रहने को, उन्होंने उस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया और पार्टी छोड़ दी। अब वो फिर से कांग्रेस में हो गए, फिर कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। तो ये कैसा पिछले दौर आया है कि जहां पर ना पार्टियों की कोई नीति है, सिद्धांत है, ना व्यक्तियों का कोई सिद्धांत है, और जनता भी, जनमत भी जो है वो भी नीति विहीन लोगों के लिए या पार्टियों के लिए वोट दे रही है। तो हम तो जनमत से कहेंगे, जनता से कहेंगे कि सबसे बड़े गुनहगार जनतंत्र आप हो जो इस जो पर मुंह लगाते हो।
जी सर। सर कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की जनता मतदान करेगी और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों ही टिकट के लिए भाग दौड़ देखी जा रही है, इसमें विचारधारा और जनता के हित कहाँ देखते हैं सर वर्तमान परिस्थिति?
देखिये मुझे तो जनता का हित कहीं नजर आता नहीं है, सिर्फ ये कि जनता के लिए खरीदा जा रहा है, जनमत खरीदा जा रहा है। जो घोषणाएं सरकारें इन दिनों करती हैं या प्रतिपक्ष के लोग करते हैं, ये पहले क्यों नहीं करते? अगर मान लीजिए कि इन घोषणाओं को सरकार ने पहले किया होता तो मैं मानता कि भाई आपकी नीयत है। अब जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, एक महीने के अंतराल में आप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लाख करोड़ की घोषणाएं कर रहे हैं, तो ये घोषणाएं खाली मतलब कार्यक्रम की नहीं है, ये तो एक प्रकार से जनमत को खरीदना है। तो जनमत बिक रहा है, भ्रष्ट नेता खरीद रहे हैं, भ्रष्ट दल खरीद रहे हैं। तो ये पहले तो मंडी व्यक्तियों की थी, अब तो दलों की भी मंडी लग गई है, ये स्थिति है।
जी सर। सर अगर देखा जाए तो किसी भी एक खेल की जो पद्धति होती है, किसी भी खेल को देख लीजिए, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, उस खेल में ग्राउंड पे सर दोनों ही दलों के जो जो खिलाड़ी है वो खेलते हैं, पर क्या लगता है सर पीछे से कोई उस चीज को हाथ मिलाए हुए रहते हैं जिसके कारण परिणाम की चिंता ही नहीं है? साथ में सर परिणाम किस तरीके से देखते हैं सर राजनीति में?
देखिए क्या है कि इस समय जो दो बड़ी पार्टियां नजर आ रही हैं, मध्य प्रदेश से खासकर मैं कह रहा हूँ, इन सब पार्टियों के मालिक है वही कॉर्पोरेट लोग हैं। वही अदानी अंबानी टाटा बिरला उन्हीं पैसे से चलने वाली पार्टियां हैं, और इन पार्टियों की जो नीतियों का नियंत्रण है वो उन्हीं के हाथ होता है। वो पार्टियां ही इनका नेतृत्व कराती हैं, वो जो कॉर्पोरेट लोग हैं वो इनका नेतृत्व कराते हैं और वो ही इनकी सत्ता को भी तय करते हैं। तुम जो आ जाओ या हम आ जाए, कुल मिला के भीतर से एक बने रहते हैं। अब तो स्थिति ये है कि मतलब प्रत्याशी भी मिलजुल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग जो बड़े नेता कहलाते हैं दलों के, वो अपने आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि तुम तो हमको चार लोगों को जीत जाने दो, हम तुम्हारे चार लोग जीत जाने देते हैं। तो ये इस लेवल पे अब मामला पहुंच गया है कि जो राजनीतिक गठजोड़ है या राजनीतिक षड्यंत्र है जो कहना चाहिए, वो इतना गंदे स्तर पहुंचा है कि अब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जो नेता लोग हैं ये आपस में मिलबाड़ के सीटें तय कर रहे हैं।
जी सर। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन का संचालन होता है, पर वर्तमान में सत्ता हो या विपक्ष हो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं, क्या कारण देखते सर?
देखिए कारण सबसे बड़ा ये कि जो जनमत है, जनमत खुद सिद्धांतवादी नहीं है और अपने सोच पर मजबूत नहीं है। अगर हम लोग देखें 1952 के बाद में जब सोशलिस्ट पार्टी बनी, हम लोग उससे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे, पर जब अलग पार्टी बनी तो आचार्य नरेंद्र जी ने एक नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और इसका कहा इस्तीफा देते समय कि भाई हमारा चूंकि हमने अपने जिस पार्टी से चुनाव लड़े थे वो छोड़ी है तो हम दूसरी पार्टी में बनाई हमने, तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। परंतु वो जो दौर था नैतिकता का दौर, वो दौर बाद में नहीं रहा। हमको याद है और आपको भी याद होगा कि 1969-70 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस का बंटवारा किया और कांग्रेस इंडिकेटर और कांग्रेस के सिंडिकेट बनी, तो श्रीमती गांधी ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति के प्रत्याशी को हरवाया, जो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल प्रस्ताव तय किया था पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिसमें खुद श्रीमती गांधी उपस्थित थी। बाद में उन्होंने निर्दलीय खड़ा कर दिया बीबी गिरी को और उनका समर्थन किया और उनके लिए वोट डलवाया। तो ये जो दल बदल का खेल है, ये जो परिवर्तन का खेल है, ये खेल तो चला ही आ रहा है लगातार और अभी लगातार और बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद में हम लोग देखा कि 1980 का साल आया, खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, कई मामलों में व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, तो 80 का चुनाव लोकसभा का वो दिल्ली से जीते थे जनता पार्टी के अंदर चुनाव चुनने पर, और 3 महीने के बाद में जब मुंबई में सम्मेलन होकर भारतीय जनता पार्टी बनी तो अटल जी उसके अध्यक्ष बन गए, उन्होंने इसको इस्तीफा नहीं दिया। तो ये जो दौर है नैतिकता का, जो दौर था, धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है, गर्त की ओर जा रहा है, गिरावट की ओर जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, अभी चरम पर पहुंचा हुआ है। इसका अंतिम इलाज अगर कोई है तो कानून के पास नहीं है, कानून नहीं कर सकता है। अंतिम इलाज कोई चुनाव आयोग नहीं कर सकता है, अंतिम इलाज कोई सरकारें नहीं कर सकते हैं, अंततः जनता ही इसका फैसला करे। जनमत से मैं अपील करना चाहूंगा कि जनता फैसला करे कि दल बदलू को वोट पर दो। अगर एक बार फैसला कर लेके चाहे जैसा हो हम दल बदलू को वोट नहीं देंगे तो बदलाव आ जाएगा, लोगों को फिर समझ जाए कि भाई दल बदल करने से फिर जनता हमारा साथ नहीं देगी। तो अंतिम फैसला आपने ऐसा कहा ना कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो जब बाय द पीपल है, जनता के द्वारा है, तो जनता जैसी चुनेगी वैसे चुनाव होगा ना, इसलिए जनता को ही तय करना पड़ेगा।
जी सर, लोकतंत्र में जनता
जी
विचारधारा राजनीतिक वफादारी जैसे शब्दों का महत्व कहां और कैसे देखते हैं, साथ ही जनता इसको कैसे समझे सर?
देखिए हम लोग अभी ये इस समय विचारधारा जो है ये वैयक्तिक हो गई है, जिस प्रकार से धर्म है वो वैयक्तिक हो गया है, तो जिसकी जो विचारधारा है जो उसको मानना है वो मान रहा है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग लोहिया के समाजवाद को मानते हैं, गांधी के विचार को मानते हैं, हम उसको मान रहे हैं, अब जो दूसरे लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई बंधन समाज का नहीं बचा। कानून का तो सवाल ही नहीं है, कानून तो बाद में आता है, पहले तो बंधन समाज का होता है। जो समाज ही कोई बंधन नहीं लगा रहा है, समाज ही उसे पतन की घटनाओं के ऊपर मोहर लगा रहा है, दल बदल पर मोहर लगा रहा है, अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए बदलाव के ऊपर मोहर लगा रहा है, परिवारवाद पर मोहर लगा रहा है, कॉर्पोरेट पार्टीज पर मोहर लगा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो लड़ते हैं एक विचार के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर। हमसे लोग पूछते हैं कि आप लोग लड़ रहे हैं कितनी सीट जीतेंगे, अभी एक हफ्ते पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि आप जीतने की लड़ रहे हैं, हमने कहा हम तो हारने की लड़ रहे हैं, इसलिए कि हमको पता है कि विचार और सिद्धांत हार रहा है, परंतु हम खड़े हैं, हम गिरे नहीं है, हम झुके नहीं है, हम वो पत्ते नहीं है, हम वो तृणमूल नहीं है कि हम जो झुक जाएं, हम लोग खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो ये निजी संकल्प है, तो हम तो कहना चाहते हैं कि जिनको निजी संकल्प है ना उनकी संख्या बढ़ाना चाहिए ताकि बदलाव आ पाए।
जी सर, तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी विचारक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघु ठाकुर जी, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से राजनीति का आयाम और गया और राजनीति दल और आज की विचारधाराओं के साथ राजनीतिक परिवेश इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ रघु सर ने साझा की। रघु सर, मोबाइल को समझ लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी आपको, और मोबाइल वाणी के श्रोताओं को भी और से नमस्कार कहिएगा, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, दीपावली के गिफ्ट शुभकामनाएं।
मोबाइल सबका दोस्त योग।